उत्तम पुरुषष्टम्य परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमादिश्य विभर्तव्ये ईश्वरः। इन श्लोकों में देख रहे हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का उपाय बताया गया। पहले उपासना करो, उपासना बाहर भी हो सकती है, जैसे मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हैं वो भी उपासना है, माला लेकर के जप करते हैं वो भी उपासना है। बाकी उपासना में कहीं भी कुछ हम कर रहे हो, परमात्मा का स्मरण उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर परमात्मा का स्मरण जुड़ा हुआ है तो उपासना बन गया। कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं और उसमें परमात्मा का स्मरण जुड़ा हुआ है और परमात्मा के लिए हम कर रहे हैं तो वो उपासना हो गया। इस बात को ध्यान में रखें, समझने की कोशिश करें। उपासना तो एक प्रकार की नहीं है, बहुत प्रकार की उपासनाएं हैं। यदि हम कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं और परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, उस स्वाध्याय के द्वारा परमात्मा का स्मरण हो रहा है तो वही उपासना है। यदि हम आपस में बैठे बातचीत कर रहे हैं लेकिन उसके साथ परमात्मा का स्मरण चल रहा है तो वो उपासना है। इसलिए उपासना के तात्पर्य को समझो। मुख्य बात उसमें है परमात्मा का स्मरण। परमात्मा के स्मरण का आधार कुछ भी हो, स्मरण करने के लिए सहायक तत्व कुछ भी हो, अगर पुस्तक सहायक तत्व है तो वो भी उपासना है, यदि माला और मंत्र सहायक तत्व है तो वो भी उपासना के साधन बन गए। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं उस कार्य में भी परमात्मा के स्मरण उस कार्य के द्वारा हो रहा है तो वो कार्य भी उपासना हो गया, उपासना का माध्यम बन गया। उपासना तो परमात्मा की होती है लेकिन ये माध्यम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मूर्तियों की पूजा है वो तो उपासना है ही है, लेकिन अगर लकड़ी की मूर्ति में परमात्मा की उपासना करें तो वो भी उपासना है, पूजा है। अगर पत्थर की मूर्ति में भगवान का स्मरण करें तो वो भी उपासना है। अगर अष्टधातु की मूर्ति में परमात्मा का स्मरण करें तो वो भी उपासना है। अगर मूर्ति खूब सुंदर गढ़ी हुई हो फिर परमात्मा का स्मरण करें तो उपासना हुई, और अनगढ़ी मूर्ति हो, ऐसे पत्थर भरा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन उसके द्वारा परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं तो अब उपासना नहीं होगा, अब भी उपासना होगा। इसलिए उपासना के तात्पर्य को उस उपासना में जो माध्यम है वो महत्व का नहीं है। उपासना में माध्यम है परम, जो लक्ष्य है परमात्मा वो होना चाहिए, उस परमात्मा का स्मरण आना चाहिए, तब उपासना होगी। जैसे संगीत के द्वारा भगवान का भजन करते हैं, अगर संगीत को गाते हुए भगवान का स्मरण आता है तो भजन हो गया और उपासना बन गई, भजन भी उपासना है, हाँ? लेकिन संगीत स्वयं उपासना नहीं है, संगीत तो उपासना का माध्यम है। अगर आपने कोई भजन गाया और गाते समय ध्यान स्वर ताल पर ही रहा और इसी बात पर रहा कि दूसरे लोग प्रसन्न हो रहे कि नहीं हो रहे, तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ? अगर इसी तरह ध्यान रहा तो फिर वो भजन उपासना नहीं है, हाँ? कला हो सकता है, हाँ? संगीत कला तो हो सकती है लेकिन उपासना नहीं। संगीत कला उस समय उपासना बन जाती है जब परमात्मा का ध्यान स्मरण रखते हुए भजन गाया जाता है। इसलिए यह तत्व की बात है, हम सभी लोग उपासना करते हैं लेकिन उसमें उपासना में भूल कहीं न होने पा दे, ये बराबर याद रखें। और फिर उपासनाएं, दूसरी बात जो अभी बात चल रही थी कि उपासनाएं स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती हैं, माने स्मरण तो परमात्मा के करते हैं लेकिन उस परमात्मा को पहले स्थूल साधन उनका लेते हैं, उनके द्वारा स्मरण करते हैं, फिर उनको सूक्ष्म करते चले जाते हैं, सूक्ष्म करते चले जाते हैं, यहाँ तक कितने सूक्ष्म जाते हैं, हमारे मन बुद्धि में पहुंच जाते हैं, हृदय में पहुंच जाते हैं और फिर वहां परमात्मा की उपासना करते हैं। ये क्रम इस प्रकार से है। और फिर उपासना कर रहे हैं जो हृदय में पहुंच गए तो फिर अब उस परमात्मा को जिसकी उपासना करते थे वहां हृदय में तो परमात्मा भी विद्यमान है, साक्षात अपरोक्ष वहां दर्शन हो सकते हैं। ये जो श्लोक में बोले थे 15वें श्लोक में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मैं सबके हृदय में व्याप्त होकर के विद्यमान हूं। तो ये किस लिए कहा? कहा कि जिससे कि व्यक्ति उपासना करते करते जब हृदय में आ जाए तो वहां अपने ज्ञान के नेत्रों को खोल करके देखने की कोशिश करे। अब तो हम ठिकाने पर आ गए जहाँ परमात्मा के दर्शन होते हैं, अब तो यहाँ परमात्मा के दर्शन होने चाहिए, अब क्यों विलम्ब हो रहा है, अब क्या बाधा पड़ रही है, इस दृष्टि से वहां देखे। तो जो पहले उपासना थी वह अब शोध कार्य बन गया। सदा पदम तत् परिमार्ग तद्यम, परिमार्गन के मन शोध करना है। तो उसके बाद फिर अब अपने हृदय में परिमार्गन करने लगो, शोध करो, खोजो। परमात्मा तो सब जगह है वैसे, और सब जगह जहां जितना जगत है सब जगह परमात्मा है। जहां जगत ना भी हो और जिस समय जगत ना भी हो तो भी परमात्मा है। लेकिन वो परमात्मा सारे जगत में होता हुआ भी अगर हम देखने की कोशिश करें आंखों से तो वहां नहीं दिखता, क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति का रूप धारण कर रखा है, कहीं सूर्य का रूप धारण कर रखा है, कहीं चंद्रमा का रूप धारण कर रखा है, कहीं वृक्षों का रूप धारण कर रखा है, पृथ्वी का रूप, पहाड़ का रूप, कोई रूप धारण कर रखे, तो रूप ही दिखाई देता है, परमात्मा नहीं दिखाई देता। लेकिन जब हृदय में आते हैं तो फिर वह परमात्मा जो रूप धारण करता है तो अब वहां केवल सूक्ष्म रूप परमात्मा के रह गए जिनको कोई धारण करता है। और वहां पर परमात्मा में यदि भक्ति हुई तो परमात्मा का सूक्ष्म रूप भी छोड़ देता है और निरावृत होकर के अपने हृदय में अपना दर्शन दे देता है, परमात्मा की उपलब्धि हृदय में हो जाती है। इसलिए ये मत समझें कि परमात्मा केवल हृदय में, ऐसा नहीं है। परमात्मा है सब जगह, अनंत है, दिव्य है, व्यापक है, और हृदय में भी है, सब जगह तो हृदय में भी है। लेकिन हृदय वो स्थान है जहां परमात्मा के साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो सकते हैं। एक बार परमात्मा को अपने हृदय में देख लो और फिर आंखें खोल करके जहां देखो वहां परमात्मा को देख सकते हो, फिर परमात्मा को देखना मुश्किल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अंत में शास्त्री कहता है, यहां पर भी कहते हैं, आगे फिर कहेंगे, 18वें अध्याय में भी कहते हैं। इसलिए यहां पर यह है कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, अब हृदय जाकर के उपासना करो तो क्या उपासना करो, तो देखो परमात्मा ही हमारी मन बुद्धि की वृत्तियों को संचालित कर रहा है, उसी से हमारी मन बुद्धि की वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, इन हमारी मन बुद्धियों का अधिष्ठान वही परमात्मा है, उसी परमात्मा के प्रकाश में मन बुद्धि की वृत्तियां प्रकाशित हो रही हैं। मन बुद्धि में जो ज्ञान शक्ति है वो परमात्मा की है, इतनी बातें ध्यान रखो। जो अंतःकरण है उसमें ज्ञान शक्ति परमात्मा की है, अंतःकरण का जो रूप वृत्त्यात्मक रूप है उसका अधिष्ठान परमात्मा ही है, अंतःकरण की वृत्ति का जो प्रकाशक है वह परमात्मा ही है, इतनी बातें ध्यान रखो। अपने अंतःकरण सुनना, अंतःकरण माने मन बुद्धि की वृत्तियां, उनके साथ में निपटा रखो। तो वहीं अब भगवान समझाते हैं कि देखो कि यह अपनी बुद्धि की वृत्ति क्या कार्य करती है, स्मृति, इसमें स्मरण आता है, स्मरण आता है तो मैंने इसके मैंने पहले कुछ अनुभव होता है, अनुभव होता है चित्त में, फिर उसका जो है संग्रह होता है, और फिर कालांतर में फिर उसी का स्मरण आता है। तो जो स्मरण है इतना कार्य, जो ज्ञान का कार्य हुआ, बाह्य जगत की वस्तुओं का अनुभव, अनुभवजन्य ज्ञान, और फिर संचित ज्ञान जो अपने चित्त में संचित हो गया, और फिर जो बुद्धि में स्मरण आया, ये समस्त ज्ञान का कार्य परमात्मा की ज्ञान शक्ति के द्वारा होता है, ये याद रखो। अब ये इसलिए दोबारा कह रहे हैं कि अपने हृदय में इनको देखो, अपने हृदय में इसी प्रकार से पुनः विचार करो। इसमें इतनी बात तो उपासना की है कि हमें अपने मन बुद्धि की वृत्तियां दिखाई देती हैं और उनकी ज्ञान शक्ति भी अनुभव में आता है, लेकिन ये ज्ञान शक्ति परमात्मा का ज्ञान की ज्ञान शक्ति है, यह अनुभव में नहीं आता। ये परमात्मा की ज्ञान शक्ति, इसे अनुभव बनाओ। जो उपासना करते हैं तो केवल शास्त्र के बल पर ये समझते हैं कि हमारे मन बुद्धि में जो ज्ञान शक्ति है जिसके कारण से अनुभव स्मृति आदि आ रहे हैं, ये सब परमात्मा की ही शक्ति से है, उपासना हो गई। और जब हमको ये दिखने लगे कि परमात्मा के ही द्वारा देखो हमारे अंतःकरण में ये ज्ञान शक्ति उत्पन्न हो रही है, देखो ये रहा परमात्मा, इसी के द्वारा जो है ये है बुद्धि की वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, और इसी आत्मा में ही बुद्ध की वृत्तियां लीन हो रही हैं, तब ये क्या हो गया, अभी उपासना नहीं, अभी हो गया ज्ञान। देखो समझ पहचान लो क्या क्या उपासना है, कहाँ तक उपासना है, और फिर कहाँ कौन सा बॉर्डर लाइन आ जाती है जहां पर कि वो है उपासना ज्ञान का रूप धारण कर लेती, वो हो गया ज्ञान। इसलिए कहते हैं उपासना अंत में व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान करा देती है। तो उपासना करते करते सूक्ष्म रूप हो गया तो परमात्मा ज्ञान हो गया। भगवान ने एक बात तो ये कही कि देखो मत्ता मत्ता मन मेरे मेरे से ही मत्ता स्मृति ही, और दूसरी ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान का अपोहन भी मेरे ही द्वारा होता है। ज्ञान अपोहन का अर्थ बताया आपको कि अब केवल ये न समझो कि इस समय हमारे मन में जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं उन वृत्तियों में जो ज्ञान शक्ति है वो परमात्मा की है, जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं वो परमात्मा नहीं है, जो वृत्तियां प्रकाशित हो रही हैं वो परमात्मा ही से प्रकाशित हो रही हैं। बल्कि ये भी देखो कि यदि जागृतावस्था में हम होते हैं तो जो भी हमको ज्ञान होता है वो परमात्मा की ही चेतना से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान शक्ति जागृत होती है, उस ज्ञान शक्ति से हम सारे जगत का ज्ञान उसी से प्राप्त करते हैं। स्वप्नावस्था में जब सोते हैं स्वप्न देखते हैं तो जो स्वप्न का ज्ञान होता है वो भी ज्ञान शक्ति परमात्मा की ही दी हुई है। जब हम सुषुप्तावस्था में पहुंचते हैं उस समय ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं रहता, सुषुप्तावस्था हो जाती है तो वो ज्ञान का अपोहन हो गया, उस समय भी परमात्मा ही उस अवस्था को प्रकाशित करता है। परमात्मा की चेतना में ही वृत्तियों का लय हो जाना, जबकि मन बुद्धि की वृत्तियां नहीं होती, उनके द्वारा कोई ज्ञान नहीं होता, तो उस अवस्था का भी ज्ञान कराने वाला परमात्मा ही है। तो ये अपोहनम भी कहिए ज्ञानम अपोहनम च, एक अर्थ और इसी प्रकार से ज्ञान अपोहन का बोलते हैं, कहते हैं कि देखो परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करने में पहली बात तो ये होती है कि व्यक्ति में असंभावना होती है, दूसरे संशय होता है, तीसरे विपर्य होता है। तो ये जो जितने भी हैं ये बाधक तत्व हैं, बैरियर्स कहलाते हैं, प्रतिबंध कहलाते हैं, परमात्मा तक पहुंचने में ये तीन प्रतिबंध हैं। प्रतिबंध सुनेंगे ना, आज रास्ते जो चले जा रहे थे एक बैरियर लगा हुआ, आगे और बढ़े तो एक और बैरियर लगा, आगे बढ़े तो एक और बैरियर लगा। हम ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं तो पहला बैरियर मिलता है असंभावना। ये जो कुछ शास्त्र में कहा गया, संत लोग कहते हैं सब असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब गलत सदमन ग्रंथ बातें हैं, तो पहले तो यह संभावना दूर हो, मिटे संभावना। तो जब हम शास्त्रों का श्रवण करें, गुरु के मुख से उपदेश श्रवण करें, तो उसके सुनने से ये असंभावना मिटती है। जो लोग अपने गीता रामायण उपनिषद इत्यादि कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते, सत्संग में भी नहीं जाते, उनको भाई पूर्वजन के प्रभाव से परमात्मा का कुछ बोध हो, मान्यता हो तो हो, नहीं तो अधिकांश लोगों में क्या होगा, स्वभावतः उनको असंभावना ही घेरे रहेगी। यदि वो परमात्मा की बात भी करेंगे, ईश्वर की बात करेंगे, तो भी कहेंगे लोग कहते ऐसा है, हो सकता हो, लेकिन कहाँ होगा, ऐसे किसने देखा है, ऐसे असंभावना एक मन में बनी ही रहती है। उस असंभावना के मिटने का एकमात्र साधन है श्रवण। जब हम श्रवण करते हैं तब बताओ उस समय ज्ञान शक्ति कार्य करती कि नहीं करती है, और उस समय जो ज्ञान शक्ति कार्य करती है तो वो ज्ञान शक्ति कहाँ से आएगी, वो भी परमात्मा की है। ऐसे देखो श्रवण करते समय जो ज्ञान शक्ति आई वो भी परमात्मा से ही आई, हम श्रवण कर रहे हैं। आगे फिर होती है संशय होते हैं, संशय में श्रवण करने में सब बातें तम समय में थोड़े आ जाती हैं, फिर संशय होते हैं, ऐसे है तो वैसे कैसे है, वैसे है तो वैसे कैसे है, यहाँ ये लिखा है वहां वो लिखा है, कोई ये कहता है कोई वो कहता है, इसमें क्या थी, ये सब संशय कहलाते हैं। ये संशय भी बैरियर है, आगे नहीं बढ़ने देते व्यक्ति को, संशय में उलझा रहता है व्यक्ति। तो ये संशय दूर होने का साधन बताया गया है मनन। जब व्यक्ति सुने हुए ज्ञान को अपने एकांत में बैठ करके पुनरावृत्ति उनकी करता है तो कहलाता है मनन, और उस मनन में वो कुछ समझने की कोशिश करता है कि यहाँ शास्त्र में ऐसा क्यों कहा गया, वहां ऐसा क्यों कहा गया, समझने की कोशिश कर रहा है। तो समझने की कोशिश करते 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 वो अपने सेल्फ एफर्ट से फिर धीरे धीरे करके उन संशयों से निवृत्त हो जाता है। तो जो संशय की निवृत्ति के लिए ज्ञान शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, पड़ती है जब ज्ञान शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान शक्ति कहाँ से आएगी? वो परमात्मा से। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति के संशय दूर हो रहे होते हैं उस समय मैं अपने ही ज्ञान शक्ति से उनके संशयों को दूर करता हूँ। और फिर संशय दूर हो गए मान लो, तो अब बात समझ में आ गई बिल्कुल कि देखो जब हम अपने एकांत स्थान में अपने हृदय में स्थित होते हैं उस समय जो साक्षी चैतन्य है, नित्य विद्यमान चैतन्य है, वही आत्मा है, वही परमात्मा, वही ब्रह्म है, वही अपना स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है, ऐसा बिल्कुल पक्की बात। लेकिन जब व्यवहार में आए तो देहाभिमान क्यों आ जाता है? जब व्यवहार में आए तो बुद्धि उलट कर जाती है, इसका नाम है विपरीत भावना। ये विपरीत भावना की भी शिकायत होती है, ये तीसरा बैरियर है अंत में। ये विपरीत भावना कैसे दूर हो कि जो उस परमात्मा का हम 24 घंटे हर समय स्मरण रखें, तो हर समय स्मरण रखने का भी अभ्यास करना पड़ता है, उसे निधिध्यासन कहते हैं। तो परमात्मा का हर समय स्मरण करते हुए यदि हम परमात्मा का स्मरण रखते हैं तो ज्ञान शक्ति की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? तो ज्ञान शक्ति कहाँ से आई? परमात्मा ही से आई। तो आप बोले कि देखो वो परमात्मा ही श्रवण के समय हमारी जो है असंभावनाओं को मिटाता है, वो परमात्मा ही मनन के समय हमारे संशयों को मिटाता है, वो परमात्मा ही निरिध्यासन के समय हमारी विपरीत भावना को मिटाता है। जो ये मिटाता है, मिटाता है, इसका क्या नाम है? ज्ञानम अपोहनम च, इसी का नाम अपोहन है। ये ज्ञान अपोहन हो गया। तो भगवान कहते हैं ये सब मैं ही करता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की उपासना करता है तो उसमें स्मृति की जरूरत पड़ती है। तो जिस समय भगवान की स्मृति करके उपासना कर रहा है तो उसमें भी ज्ञान शक्ति की जरूरत पड़ती है। वो ज्ञान शक्ति परमात्मा ही से प्राप्त होती है, परमात्मा ही उपासना के द्वारा स्मरण दिला करके उपासना कराता है। फिर जब व्यक्ति को ज्ञान उदय होता है उसके जब उसके जो है संशय आदि जो उसके होते हैं, असंभावना संशय विपर्य होते हैं, उनको सबको भी वो परमात्मा दूर करके ज्ञान भी उदय कराता है। उसके व्यक्ति को ज्ञान हो गया, और ज्ञान हो गया तो 24 घंटे ज्ञान रहा, ऐसी सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर उत्पन्न कर दी। तो ये किसने कर दी? भगवान कहते मैंने ही कर दी। इसलिए धीरे धीरे करके उस परमात्मा को अपने हृदय में पहचानो। अब भगवान कहते हैं कि देखो इन संशय आदि को मिटाने के लिए संशय कब मिटेगा? जब आप अपने हृदय में परमात्मा को देख लो। असंभावना कब मिटेगी? जब अपने हृदय में परमात्मा को देख लो। तो ये सभी शास्त्र हैं, वो श्रवण के समय भी असंभावनाओं को मिटाते हुए हृदय तक ले जाते हैं, हृदय में परमात्मा को दिखा देते हैं कि देखो एक सत्ता ऐसी है कि नहीं है जो नित्य विद्यमान है, अक्षर है, अविनाशी है, ऐसे आपको मिलती कि नहीं मिलती है? जहां मिल गई तहां बता देते देखो अब तुम्हें असंभावना नहीं रहनी चाहिए, संशय नहीं रहने चाहिए। तो इसीलिए भगवान फिर जो है ये है 16वें श्लोक में ये कहते हैं कि देखो आप अपने हृदय में देखो, विचार करो कि सारे जगत में, बाहरी जगत में, अपने भीतर भी दो प्रकार की सत्ताएं हैं, एक तो है क्षर और दूसरी अक्षर। पहले भगवान 7वें अध्याय में कह रहे आए कि देखो मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। तो जिसको पहले भगवान ने अपरा प्रकृति कहा था वो यहाँ तो उसका नाम क्षर है, क्षरा सर्वाणी भूताणी, वो अपरा प्रकृति। भगवान ने वहां बताया एक परा प्रकृति है, जीव भूता सनातना, वो जीव भाव को प्राप्त हुआ हुआ। तो जीव भाव को प्राप्त हुआ वो क्या है? वहां पर जो परा प्रकृति है वो यहाँ पर अक्षर है। तो दो तो ये हुए क्षर अक्षर। ऐसे ही 13वें अध्याय जब आए तब भगवान ने दो शब्द और बताए उनकी पहचान के लिए प्रयोग किए, एक कर दिया क्षेत्र और दूसरा कर दिया क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र क्या हो गया? शरीर आदि जितने भी भौतिक जगत जितना भी है, ये जो क्षर जितना भी है वो तो है क्षेत्र। और क्षेत्र का जो ज्ञाता है, जिसको वो जानने वाला है, वो हर व्यक्ति इस क्षेत्र को जानने वाला है। जो चेतना जिसको द्वारा व्यक्ति जानता है वो क्षेत्र में हो गई। अब फिर भगवान वही कहते हैं देखो क्षेत्रज्ञ तो तमाम है, लेकिन सब क्षेत्रज्ञों का क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, मैं ही सब में क्षेत्रज्ञ होकर के बैठा हुआ हूँ। अब देखो बिल्कुल वही बात है, यहाँ पर भी दूसरी शब्दावली है, कहने का तरीका दूसरा हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं कि देखो अपने हृदय में देखो कि एक तो प्रकृति है जो क्षर है, और एक है जीव जो कि अक्षर है, और फिर एक है वो परमात्मा है? जो परमात्मा जो सब अक्षर जीवों के रूप में विद्यमान है, ये बात बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों पुरुषों के इस लोक में दो प्रकार के पुरुष, क्षरस क्षरा अक्षरस्य, एक क्षर एक दूसरा अक्षर। यहाँ जो क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष को कह दिया। देखो अक्षर तो है, क्षर तो है प्रकृति, जड़ प्रकृति है, लेकिन उसको भी पुरुष कह दिया, क्योंकि जड़ प्रकृति का अधिष्ठान परमात्मा ही है। परमात्मा अधिष्ठान होकर के उसमें विद्यमान होने के कारण से जड़ प्रकृति भी नश्वर प्रकृति भी पुरुष है। पूर्यते इति पुरुषः, इस जड़ प्रकृति में क्या भरा हुआ है, किससे ही जड़ प्रकृति बनी है, परमात्मा से बनी है, इसलिए परमात्मा जो पुरुष हो गया। ये क्षर पुरुष के माने वो परमात्मा जिसने की क्षर सृष्टि का रूप धारण कर दिया है, नाम रूपात्मक जगत बना दिया है, तो ये नाम रूपात्मक जगत तो क्षर है, उनका भी अधिष्ठान ईश्वर परमात्मा क्षर होकर के पुरुष होकर के विद्यमान है, अक्षर होकर के। इसी प्रकार बोले कि देखो उसके बाद फिर जीव है, जीव तो शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे शरीर में जाता है, इस प्रकार शरीर यात्रा करता रहता है। जीव जो है वो नित्य विद्यमान इस प्रकार से अविनाशी है, इसलिए ये अक्षर है। और ये पुरुष क्यों है, क्योंकि जीव का जो अधिष्ठान है वो भी अक्षर है, जीव का अधिष्ठान भी पुरुष है। जब जीव का हम विश्लेषण करते हैं तो पंचदशी में देखते हैं कि उसमें जीव में तीन बातें हैं, अधिष्ठान भूत तो है पुरुष, अधिष्ठान के ऊपर अंताकरण की वृत्ति है, ये दूसरी चीज हुई। अंताकरण की वृत्ति का जो प्रकाशक चैतन्य है, जो उसे प्रकाशित करता है, जो उसमें प्रतिबिंबित होकर के उसको प्रकाशित करता है, ये तीसरी वस्तु हुई। ये तीनों मिलकर के जीव कहलाता है। अगर सावधानी पूर्वक अपने भीतर देखो तो ये तीनों मिलेंगे। एक तो वो जब वृत्ति उत्पन्न होती है तो उसमें एक प्रतिबिंबित चैतन्य उत्पन्न होता है, जो प्रतिबिंबित चैतन्य उत्पन्न होता है वो प्रतिबिंबित चैतन्य ही जीव है। लेकिन ये प्रतिबिंब है किसमें, ये वृत्तियों में, अंताकरण की वृत्ति के अहंकार की वृत्ति में है, तो अहंकार की वृत्ति भी जीव का एक अंग हुआ। लेकिन ये अहंकार की वृत्ति उत्पन्न कहाँ से होती है, ये परमात्मा से उत्पन्न होती है, जिस परमात्मा से उत्पन्न होती है उसका नाम पुरुष है, तो उस पुरुष से ही ये वृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए इस जीव को भी पुरुष कह देते हैं। लेकिन ये अक्षर है, वो अक्षर प्रकृति की तरह से नाम रूपात्मक जगत की तरह से नाशमान नहीं, दोनों में अंतर हुआ। अब देखो इस जो बात इसमें इस श्लोक में जो बात कहने को रह गई थी वो अगले श्लोक में कह देते हैं। ये कहते हैं उत्तमा पुरुषस्तन्य, उत्तमा पुरुषस्तन्य, दो बातें तो ये हो गई। कहती है पुरुष, दो पुरुष तो ये हो गए, लेकिन एक पुरुष उत्तम पुरुष है, वो कौन है कि अन्य, इन दोनों से अन्य है। परमात्मा इति उदाहरता, उसका क्या नाम है कि उसी का नाम परमात्मा है। जो अक्षर पुरुष है उसको तो छोड़ दो, किनारे कर दो। अब दो पुरुष लोग, एक अक्षर पुरुष है और दूसरा एक और अक्षर पुरुष। एक अक्षर पुरुष वो है जो कि उत्तम नहीं है, और दूसरा अक्षर पुरुष है जो कि उत्तम है। उत्तम पुरुषा स्तन्य, उसका क्या नाम है कि उसका परमात्मा नाम। इसके माने जो पहला वाला अक्षर पुरुष था जो अनुत्तम है वो कौन है, वो जीव है। अपने आप अर्थ लगाओ, हिसाब किताब तो लगाते रहो, बस जोड़ तोड़ मिलाते रहो आगे पीछे का, तो कहते हो देखो ये उत्तम है तो उसके माने मध्यम अधम कौन है, है? किसके पहले जिसका वर्णन कर वो है। तो जीव जो है वो हो उत्तम पुरुष नहीं है, उत्तम पुरुष परमात्मा है। तो जीव परमात्मा का भेद कर लो, चाहे ऐसे भेद कर लो कि जीव जो है प्रतिबिंबित चैतन्य है और परमात्मा जो अपना वास्तविक चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, तो उत्तम कौन हुआ? प्रतिबिंब उत्तम हुआ कि बिंब रूप जो चैतन्य वो उत्तम हुआ? तो आपको कि हाँ ठीक है भाई, बिंब रूप चैतन्य वो तो उत्तम हो गई, प्रतिबिंब कहाँ से उत्तम हो जाएगा? इसलिए उत्तमता उस परमात्मा में देखो। तो ऐसे उत्तम पुरुष परमात्मा को बता करके अपना ध्यान, जो हमने अपनी वृत्तियां देखी थी अपने हृदय में, वृत्तियों का अधिष्ठान जो अक्षर देखा था, पुरुष देखा था, वो तो देखा सो देखा, लेकिन इसके बाद अब और आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके ये देखो कि उत्तम पुरुष कौन है, वो भी हृदय में उपलब्ध होगा, दिखाई देगा उत्तम पुरुष। कहते उसका नाम क्या है? तो उसका नाम परमात्मा है। देखो आत्मा जो है, आत्मा के माने सच्चिदानंद स्वरूप जो सत्ता है, उसका नाम आत्मा है। वही आत्मा जब उसकी उपाधि हुई, वृत्तियों की उपाधि हुई, अहंकार की उपाधि हुई, तो फिर वही आत्मा जीव कहलाया है। और जब उसने, उस आत्मा ने उस अहंकार की उपाधि को छोड़ दिया, देहादि की उपाधियों को उसने छोड़ दिया, तो निरुपाधिक होकर के वही आत्मा अब क्या है? उसका नाम परमात्मा है। तो परमात्मा जो है, निरुपाधिक जो परमात्मा है, वो तो उत्तम है। जो सोपाधिक है, उपाधि जिसने धारण कर ली और उपाधि के पीड़ाओं से, दुखों से ग्रसित हो गया, उनके वश में हो गया, तो वो उत्तम नहीं रह गया, वो हीन हो गया, उसमें हीनता आ गई। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान दिलाते हैं। उत्तम पुरुष तो वैसे तो पुरुषोत्तम या उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम माने अच्छा, गुड बेटर बेस्ट, सर्वोत्तम के माने बेस्ट, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है, तो उत्तम परमात्मा है। लेकिन ये जो उत्तम पुरुष है, इसका एक अर्थ और भी है। व्याकरण के दृष्टि से भी अर्थ लगा लो। व्याकरण में पुरुष तीन होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। व्याकरण के तीन पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिसको हम मैं कहते हैं वो तो उत्तम पुरुष, जिसे तुम कहते हैं वो मध्यम पुरुष, और जो मौजूद नहीं है, इनके दोनों के अलावा कोई तीसरा है, उसका नाम अन्य पुरुष। तो आप बोले कि देखो ये प्रकृति जो है वो तो अन्य पुरुष है, और जो परमात्मा जैसे बात कर रहे हैं तो कैसे तो बात नहीं कर रहे हैं, तो जो तुम है वो मध्यम पुरुष कौन है? कि वो जीव है। और उत्तम पुरुष कौन है? जो अपने आप को मैं करके जानता है। तो उत्तम पुरुष हुआ परमात्मा, जो मैं करके बोल रहा है, जिससे परमात्मा बोल रहा है वो मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में बोल रहा है कि देखो इस प्रकृति की उपाधि को धारण करके तुम मध्यम पुरुष बन गए हो, वो प्रकृति है, वो अन्य पुरुष है। तो अब बताओ, मैं तक पहुंच गए, अपनी मन बुद्धि की वृत्तियों को भी देखा, अहंकार की वृत्ति को भी देखा, और वही अहम भाव रखे हुए बैठे थे। अब देखो कि ये वृत्तियां जिस समय नहीं होती हैं, या इन वृत्तियों को जो प्रकाशित करता है, जिसके कारण से इन वृत्तियों में ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है, उसकी तरफ ध्यान दो। का क्या है? तो लेकिन है तो सही करके छुट्टी नहीं हो गई, ये कहोगे वही मैं हूं, ये बोल अपने हृदय में खोज करते करते धीरे धीरे शिफ्ट होते जाओ एक स्थान से दूसरे स्थान। पहले शरीर में हम भाव था, तो शिफ्ट कर गए, वहां से मन बुद्धि में आ गए, हृदय में आ गए, जहां अहंकार की प्रतीत होती वहां आ गए। ये अहंकार यहां लग रहा है अपने अंतःकरण की वृत्ति में, शरीर में नहीं हूं, अहंकार जो कि अपने मन बुद्धि में लग रहा है वो अहंकार में हूं। तो अपना शिफ्ट हो गए ना वहां से वहां तक। अब वहां से उस जहां अहंकार में हम भाव था उसको शिफ्ट करो, जिसके प्रकाश में ये अहंकार देखने में आता है, जिस चेतना के प्रकाश से ये अहंकार प्रकाशित होता है, और जिस चेतना के प्रकाश में इस अहंकार के लीन हो जाने का भी प्रकाशन होता, अहंकार सुषुप्त अवस्था में नहीं रहता। हाँ, तो इसका प्रकाशक कौन है? क्या उस समय हम नहीं है जिस समय अहंकार नहीं है? इस अहंकार के न होने के ही प्रकाशक तो विद्यमान, जो अहंकार का प्रकाशक वो मैं हूं कि अहंकार में हूं? अब देखो यहां बुद्धि लगाई थोड़ी सी, फिर विचार किया, तो विचार करने से लगा कि जब अहंकार नहीं होता तो भी हम होते हैं, तो भी हम होते हैं, तो वही कौन हुए? इसलिए उत्तमा पुरुषस्थ अन्य ये उत्तम पुरुष है। जब आप उसमें जिस चैतन्य में हम आकर के वहां पहुंच गए जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो सदा विद्यमान है, हैं? जो अहंकार के होने न होने को प्रकाशित करता है, बुद्ध की वृत्तियों के होने न होने को प्रकाशित करता है, ऐसा जो चैतन्य है वो चेतना ही नित्य विद्यमान होकर के हृदय में स्थित है, वही कांस्टेंट फैक्टर है जिसकी बात कर रहे थे, कांस्टेंट फैक्टर है, उसी में स्थित होकर के अपने आप को समझो कि ये जो उत्तम पुरुष है यही परमात्मा है, यही अपना स्वरूप है। अब बोले ये लोकत्रय मादिश्य, ये वो चेतना है जो तीनों लोकों में व्याप्त है। तीनों लोकों में व्याप्त के माने जागृत स्वप्न सुषुप्त, तीनों लोकों में व्याप्त है, जो ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान इन तीनों में व्याप्त है, जो दृष्टा दृश्य और दृष्टि इन तीनों में व्याप्त है, ये सब लोक हैं, ये इन सब तीनों लोकों में जो व्यक्ति जो चेतना विद्यमान है वो चेतना जो है उत्तम पुरुषा है। उत्तम पुरुषा के माने ये भाव रखो कि यही मैं हूं। ये लोकत्रय आविश्य, आविश्य मैंने प्रवेश है, उनमें आविष्ट होकर के प्रविष्ट होकर के, और विभर्त अव्यय ईश्वरा, विभर्त मैंने विद्यमान है, शोभा पा रहा है, और ये अव्यय है, ये निर्विकार चेतना शुद्ध चेतना परमात्मा चेतना जो वो कभी नष्ट नहीं होती। ईश्वरा ये स्वतंत्र है, यहाँ ईश्वर का तात्पर्य स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र, ईश्वर के इसलिए कह दिया कि अब ये जीव भाव में नहीं है, ईश्वर भाव में है। जीव भाव में जब तक था तब तक परतंत्र था, लेकिन जहां आत्म भाव में परमात्म भाव में आ गया तब स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया तो ईश्वर हो गया। जैसे मान लो कोई राजा है, हाँ, तो कोई राजा कब राजा है? मंत्री के कहने पर चले तब राजा है कि मंत्री की बात को सुन ले करे अपने मन से तब राजा है? अगर मंत्री की बात पर ही चलता रहे, अपना विचारे में करे, अपने कोई सामर्थ्य का राजा का बात कर, डमी कैंडिडेट बैठा दिया गया मुर्दा, ऐसे ही सब चलाते रहा है मंत्री। कहीं कहीं कोई कोई राजा ऐसे भी हुए कि राजा की एक बात नहीं चलती थी, उसकी रानी थी जो कहती थी वही सब होता था, तो रानी राजा को आदेश देती कि अब ऐसा तुम करो ऐसा तुम करो, तो राजा को वैसे करना पड़ता है। तो बताओ राजा राजा है कि वो प्रजा है? राजा तो हो गई वो रानी, अब वो राजा रह गया है वो परतंत्र हो करके, दिखावटी राजा रह गया, ऐसे राजा नहीं, ऐसे जीव जो था उसको क्या हो गया, वो तो जो प्रकृति है वो प्रकृति जिस प्रकार संचालित करती थी, जैसा सुझाती दिखाती थी, जो सुख दुख देती थी वही माने रहता था, परतंत्र था। लेकिन अब हो गया राजा स्वराट हो गया, जैसे आप कह बोलो अपने शब्द में एक शब्द आपने पढ़ा स्वराट, तो स्वराट का माना स्वतंत्र हो गया, ईश्वर हो गया वो। इसलिए बोलेगा इसको समझो कि जहां आत्मभाव परमात्मा में आत्मभाव आ जाएगा, जीव भाव समाप्त हो गया, जो अहंकार में हम भाव था उसको छोड़ दिया, परमात्मा में जब हम भाव आ गया तब आपको ईश्वर तो प्राप्त हो गया।